दामोदर दे
इन माय सन जीव शी इज माय वाइफ सुरभि
बैठे ना माता जी बैठो ना सैमसन तो बैठो
क्या कहोगे आप कहोगे प्रभु आप कहोगे
जनों का हुआ आप लोग बाकी हैं
पद जी
हरे कृष्ण माय नेम इज प्रियंका रॉय इज माय वाइफ रेचली एंड माय डॉटर नाथ
कहां से
दामोदर
इंडिया
इंडिया नॉर्थ ईस्ट से
नॉर्थ ईस्ट
कौन सा त्रिपुरा
यस
बांगाली
फरीदाबाद
से सेवा कर रहे थे फादर भूपेश्वर प्रभु के साथ में थे
जब अर्ले
तो सर को इंजीनियर लेके
आया और वहां से फिर प्रभु फिर अबू धाबी आ गए अब अभी अबू धाबी से अगले 40 साल के अंदर प्रभु तुम्हारा फुल टाइम टाइम जाने का फरीदाबाद
फुल टाइम
मतलब आगे नहीं बोलो सॉरी सॉरी
प्रभु जी को अच्छे से जानते
हैं श्याम चंद्र प्रभु नहीं नहीं बाकी तो नंबर
लाउडली
श्याम चंद्र प्रभु इज फ्रॉम पाकिस्तान करंटली ब्रह्मचारी नॉट येट डिसाइडेड वेयर टू गो इधर ब्रह्मचारी और खस्ता सनली प्रश्न ब्रह्मचारी
सेम प्लेस आल्सो राम सदा
प्रभु अनदर 2 टू 3 डेज मैक्स इन 5 डेज ही इज जॉइनिंग फुल टाइम He is going to Pakistan and then from Pakistan he will move to India for a training, Delhi. 6 to 8 months he will get his training in Delhi. Then he is joining full time in Pakistan. And then my job has been resigned, visa has been cancelled. So, we will move to any full time. So, definitely after the program, once everyone will come, so we will do one small prayer for Prabhu's and for his future. So, you can join both of them. Pakistan ke andar bhi as such koi established ISKCON center nahi hai to maharaj ki aagya se ki dono ko dono ne plan kara hai they already are preaching in Pakistan very well they both are preaching is they both are do sakte hai aur ha inka plan yehi hai full time jane ka ki bahar jaakar ye log center Pakistan mein establish karenge sari ko
ek ek minute main ek 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 minute fast mil liya aap bataye
na Hare Krishna
Prabhu ji aap bataye
पहुंच दयानंद प्रभु है और दयानंद यादव बाबू है आज सुधीर लेकिन प्रभु जी ऐसे ही है ना और सेवा भी बताना चाहिए
सेवा नहीं ठीक है तुम लोग कीर्तन वगैरह करना है जस्ट स्मॉल हमारे पास टाइम कितना है
टाइम बहुत कम है अच्छा और भी बोल देता है ये पूजा का प्रोग्राम के बाद बाबू जी का 1:30-2 बजे सिंधी हल में क्लास है तो हम यहाँ से सिंधी हल जा सकते हैं बाबू जी का मुझसे हम वहाँ पे
मुझे हारमोनियम नहीं आता
मिलन आता है
आप में से बजाते हैं अच्छा ओके करतल बजा लो कोई भी कोई और है बजाने वाला अच्छा किचन में नहीं देख लीजिए यदि बिजी है तो फिर बजा लेंगे आप ना नहीं नहीं
ये प्रभु जी भी पंचायत विजय आश्रम में इनके साथ ही रहते हैं, श्यामचंद प्रभु के साथ ही रहता है।
अच्छा,
इनका नाम ग्रेश ध्रुव है और ये महाराज से एस्पायर है।
चैंटिंग बॉक्स इधर ये कर लेंगे, कर लेंगे आप कर लेंगे। सॉन्ग बुक है क्या यहाँ? सॉन्ग बुक है किसी के पास? लैपटॉप में ढूंढना पड़ेगा। जय अनिल ओ प्रेम धन है ना जो सॉन्ग, उसे लैपटॉप में भी निकाल सकते हैं। सबके पास होगा ना मोबाइल में सॉन्ग?
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण माता। ऊपर बैठ सकते हैं?
नहीं नहीं ठीक है, ये नीचे कंफर्टेबल है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मैं यहाँ आने से पहले महाराज से मिलने गया था तो महाराज मुझे कह रहे थे, महाराज ने बुलाया, महाराज मॉर्निंग में रशिया से आए थे और कहा कि मुझे दोपहर में आकर मिलो, तो मैं जल्दी गया क्योंकि दूसरे दिन मुझे यहाँ निकलना था। तो भगवान की योजना थी कि महाराज उसी दिन आए और फिर मुझे एक दिन के बाद मॉर्निंग निकलना था। तो मैंने कहा महाराज मुझे तो वहाँ जाना है, मैंने पहले भी पूछा था महाराज को, जनरली ब्रह्मचारी ज़्यादा बाहर जाते नहीं, सन्यासी जाते हैं, है ना, हमारे गॉड ब्रदर्स बहुत रेयरली। तो फिर महाराज ने कहा मेरे बहुत कम डिसाइपल्स हैं वहाँ, और ट्राई करो कि सबसे मिल के आओ। तो मैं सोच रहा था कि कैसे संभव है सबसे मिलना, हाँ कोई अबू धाबी में है, महाराज ने कहा शारजा में एक डिसाइपल है, कुछ दुबई वगैरह में है। तो महाराज यहाँ एक ही बार आए थे, हालांकि मैं बहुत साल पहले, अभी मुझे याद नहीं, कई साल पहले मैं आया था और वो वहाँ रामकृष्ण प्रभु के यहाँ रुका था, शारजा में उनके वहाँ रुके थे महाराज। मतलब रामकृष्ण प्रभु ने कहा कि मेरे घर में, मतलब महाराज ने कहा मैं आया था लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ रुका था, तो वो डिवोटी सामने ही खड़े थे महाराज के, तो महाराज ने कहा आप मेरे घर में रुके थे जब हम लास्ट टाइम कार्तिक में मिले थे। तो फिर महाराज ने कहा कि मेरे जो डिसाइपल्स हैं प्रयास करो, तुम जा ही रहे हो तो सबसे मिलो और ट्राई करो कि वो भी रेगुलरली आपस में मिलते रहें। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि भक्तिमय जीवन में हमारा भक्ति निर्भर है आध्यात्मिक गुरु के प्रति हमारा कितना फेथ है, श्रद्धा है और सेवा की भावना है। इसलिए हम रोज रोज गाते हैं ना उठकर, श्रील प्रभुपाद ने हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक सॉन्ग दिया है, उठ के ही सबसे पहले क्या करने के लिए, गाने के लिए, कौन सा है वो, संसार दावा नल लीड लोका। तो मतलब कि उठते ही एक जो शिष्य है या डिवोटी है या साधक है उसे ये अनुभव करना होता है कि सबसे पहले शब्द उसको ये उच्चारण करने होते हैं, संसार दावानल। संसार दावानल के समान है, मुझे डिवोटीज कहते थे कि वहाँ मिडल ईस्ट के जो कंट्री एरिया है वहाँ गर्मी बहुत है लेकिन मुझे यह दावानल महसूस नहीं हो रहा है। या घर में जाओ तो एयर कंडीशन घर, बाहर निकलो तो कार्स, किसी प्रोग्राम में जाओ तो, मतलब दावानल की अनुभूति नहीं हो रही है। तो लेकिन फिर भी हमें शास्त्रों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से या गुरु के द्वारा समझ लेना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि ये जगत वास्तव में दावानल से भरा है। तो जैसे एक बार प्रभुपाद जापान गए थे तो वहाँ प्रभुपाद के एक डिसाइपल भूरीजन प्रभु और उनकी वाइफ जगत तारिणी माता जी, ये दोनों प्रीच करते थे। तो जगत तारिणी माता जी पहले वहाँ प्रचार करती थी, तो नहीं भूरीजन प्रभु पहले प्रचार करते थे, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में थी जगत तारिणी माता जी। प्रभुपाद और उसने ज्वाइन कर लिया फुल टाइम। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे लिए मैंने पति ढूंढ के रखा है, तुम जाओ वहाँ और उनसे विवाह करो। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो वो गए और उन्होंने गुरुद्वारा में, दो ही लोग थे, तीन ही डिवोटीज थे, उन दोनों ने विवाह कर लिया। और फिर रोज प्रभुपाद की जो ऑर्डर थी, प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार करने का प्रयास करो, क्योंकि जो गुरु का जो ऋण है हमारे ऊपर, हम उनको रिपे नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा हम हल्का हो सकते हैं। और वो चीज क्या है कि हम गुरु की सेवा कर सकते हैं दूसरे जीवों को कृष्णा से कनेक्ट करके, गुरु के शरणागत बनाकर। तो प्रभुपाद ने उन दोनों को कहा कि आप लोग प्रचार करो, प्रचार करो, तब गुरु का ऋण थोड़ा सा कम हो सकता है। तो वो दोनों पति पत्नी भूरीजन प्रभु के गले में मृदंग होता था और ये क्या करते थे, करताल। और ये दोनों ही लोग जापान के या और किसी कंट्रीज के, हांगकांग वगैरह, वहाँ रोड पर दोनों ही हरिनाम करते थे। अब सोचो दो ही लोग पति के गले में मृदंगा और पत्नी क्या कर रही है, और कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन केवल एक ही चीज क्या था, प्रभुपाद की ऑर्डर। तो डिसाइपल का मतलब है जो डिसिप्लिन में हो, या डिसाइपल का मतलब है कि जिसका जीवन गुरु की आज्ञाओं की पूर्ति करने के लिए है, वो वास्तव में शिष्य है। शिष्य शस धातु से आता है, शस धातु जो संस्कृत का रूट वर्ड है, उसे शस्त्र शब्द बनता है और शिष्य भी शब्द बनता है। तो शिष्य मतलब जो शासन में रहे, किसमें रहे, शासन में रहे ना। तो वैसे ही प्रभुपाद के ये दोनों डिसाइपल्स वहां अकेले प्रीच कर रहे थे और उनके पास रहने के लिए प्लेस भी नहीं था। कभी वो किसी गैरेज में रहते थे, दूसरे दिन पूरे दिन गले में मृदंग करता लेकर प्रचार करते थे। तो ऐसे करते करते वो माताजी स्कूल्स में भी प्रीच करने लगी, बहुत सारे बच्चों चांटिंग करने लगे, कई सारे फैमिलीज जुड़ गए। और फिर एक बार उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया, तो प्रभुपाद वहां जाने के लिए तुरंत रेडी हो गए। तो प्रभुपाद जब वहां गए तो प्रभुपाद को क्लास देनी थी, प्रभुपाद को कहा प्रभुपाद आप कुछ बोलिए इन सबको ना। तो जैसे प्रभुपाद ने लेक्चर देना शुरू किया तो प्रभुपाद ने ये लाइंस बोली, संसार दावा नल लीड लोका। प्रभुपाद ने कहा कि ये भौतिक जगत दावाग्नि से भरा हुआ है, हर एक व्यक्ति के लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ विपत्तियां या स्ट्रगल्स या कष्ट आते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने पूछा, जब ये दावाग्नि का वर्णन कर रहे थे तो एक बच्चा खड़ा हो गया, प्रभुपाद ने क्लास एंड किया और एक छोटे से बच्चे ने पूछा, प्रभुपाद ये आग किसने लगाई थी। प्रभुपाद ने कहा ना कि दावाग्नि मीन्स जंगल में जो आग लगी होती है जिसको रोकना इम्पॉसिबल है। तो प्रभुपाद ये बोल के क्लास खत्म किया, तो बच्चा कहता है कि ये संसार में आग किसने लगाई। प्रभुपाद ने कहा लगाई नहीं जाती, अपने आप लगती है। वैसे ही है इस भौतिक जगत में, हम अपने जीवन में कष्टों को इनवाइट नहीं करते लेकिन वो आ जाते, जैसे अतिथि। अतिथि मतलब बिना कॉल किए, बिना SMS भेजे, बिना मेल किए और बिना किसी तिथि के जो आपके घर में पहुंचता है वो अतिथि है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी जो ये कष्ट है वो भी उसी प्रकार से है, बिना किसी इनविटेशन के वो आ जाते हैं। तो शिष्य का मतलब ही है कि जो गुरु के प्रति अपनी शरणागति को बाद में ले सकते हैं। आप ले लीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो शिष्य का मतलब ये है कि जो गुरु की सेवा के लिए तत्पर है। तो ऐसे नहीं कि हम आध्यात्मिक गुरु से दूर हैं तो गुरु को हमारी चिंता नहीं है। हाँ, तो गुरु हम जितना अधिक आध्यात्मिक गुरु का चिंतन नहीं करते उससे अधिक गुरु को अपने डिसाइपल की चिंता होती है, क्योंकि उन्होंने क्या की है, कृष्ण को ये वचन दिया है। आध्यात्मिक गुरु किसी को इनिशिएशन देते हैं तो उस जीव की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, आध्यात्मिक गुरु की है। और सबसे बड़ा सेवा है संसार में आध्यात्मिक गुरु का सेवा, जो जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जाती। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कृष्णा ले सकते हैं या उनके बहुत ही समर्पित डेडिकेटेड जो सर्वेंट हैं वो ले सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद या भी महाराज जैसे महान आचार्य गण हैं, वो कृष्ण के बिहाव पर ये सेवा को लेते हैं और स्वयं कितना भी कष्ट स्वीकार करें लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे जैसे बद्ध जीवों को अंधे कुएं से बाहर निकालते हैं और कृष्ण के चरणों में डालने का प्रयास करते हैं। इसलिए शिष्य का ये कर्तव्य है, महाराज एक अपने इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि ये शिष्य को याद रखना चाहिए कि गुरु ने मुझे क्या क्या आदेश दिए हैं। शिष्य का मतलब ही है जो जीवित है केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। इस संसार में या तो आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करो या मटेरियल नेचर माया के ऑर्डर्स को फॉलो करो, दोनों में से एक चूज करना होगा। तो महाराज बहुत अधिक चिंता व्यक्त कर रहे थे, उनके वाणी से लग रहा था। मैं आधा घंटा महाराज के साथ स्पेंड किया नून में, आधा घंटा हमें मुझे तो पूरा 3-4 घंटे रोकाया, 15 मिनट बात की, फिर गोविंदा में जाना था, फिर और बात की, फिर ऐसे पूरा 3-4 घंटे रहा। फिर महाराज प्रसाद लेते लेते बता रहे थे, महाराज कहते आदित्य कृष्ण प्रभु को जाके मिलो। महाराज ने स्पेशली मुझे नाम किसी का लिया तो महाराज ने कहा आदित्य कृष्ण प्रभु है वहाँ दुबई में, हाँ उनको जब आप जाओगे जरूर मिलो, उन सब भक्तों को ट्राई करो, उन सबको मिलकर उनको कहो कि वो आपस में रेगुलर मिल सकते हैं। तो जब हम आपस में मिलते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है ना, गुरु की सेवा को कंटिन्यू करने के लिए। ये देखते हैं हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में, महाराज के जीवन से हम देखते हैं कि महाराज अर्ली डेज में मैं भी अमेरिका में नौकरी कर रहे थे कोका कोला में, तो उस समय जो भी धन आता था सारा के सारा धन किसके हाथ में देते थे, श्रील प्रभुपाद के हाथ में। तो कितना शरणागति की हद होती है ना, कुछ हम तो अपने आप को रोक के सोचते हैं कि अरे शरणागत हो या नहीं हो, ये ऑर्डर फॉलो करो या नहीं करो। तो महाराज अपने अर्ली डेज में, और वो अपने जीवन में किसी साधु को सबसे पहले मिले होंगे तो वो किन से मिले थे, श्रील प्रभुपाद से। प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आने वाले हैं तो उस मंदिर का जो प्रेसिडेंट था उन्होंने कहा प्रभुपाद आने वाले हैं, तो प्रभुपाद का नाम सुना था, मिले नहीं थे कभी, तो इन्होंने कहा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना। डिवोटी का मतलब है कि जो सेवा करने के लिए तत्पर है, शिष्य का मतलब है जो सेवा करने में अति दक्ष है, आलसी नहीं है। तो महाराज ने पूछा कि मेरे लिए क्या सेवा हो सकती है, उस समय उनका नाम गोपाल गोपाल कहते थे, माता पिता ने भी नाम क्या रखा था उनका, गोपाल दिल्ली में, हाँ तो उनको गोपाल गोपाल ही कहा जाता था। तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रभुपाद एक रूम में रहने वाले हैं तो वहाँ उनका टॉयलेट सफाई करना है, रूम और टॉयलेट वो कौन करो, आप करो। तो इतना अमेजिंग, इतना दक्षता के साथ उन्होंने वो सेवा की। तो प्रभुपाद आके पूछे कि इतना रूम और ये सब क्लीन किसने किया है, हाँ तो बताया कि किसने किया, गोपाल ने। तो फर्स्ट इंडियन थे प्रभुपाद के मिशन में जो प्रभुपाद के बहुत विश्वासु व्यक्ति बने, बहुत क्लोज के व्यक्ति बने, और प्रभुपाद सर्वाधिक उनसे प्रीति रखते थे। प्रभुपाद कहते थे कि तुम्हारा हम्बल नेचर मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तो महाराज को किसी भक्त ने मायापुर में पूछा कि आप इतने साल से प्रभुपाद की सेवा में हो, इवन इस्कॉन में भी महाराज को समझा जाता है प्रभुपाद मैन, क्या कहते हैं, प्रभुपाद मैन होते ना, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को पूछा कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरे जो गुरु हैं हाँ वो वैकुंठ मैन है। अच्छा, हरे कृष्ण, माता जी को तो जानता हूँ मैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आइए माता जी फरीदाबाद से हैं।
नहीं,
उनको दे दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, प्रभु जी कह रहे थे कि फरीदाबाद से भी रिसेंटली। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, प्रभु जी कह रहे थे फरीदाबाद से भी माता जी और कुछ डिवोटीज हैं, तो मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं। हरे कृष्ण, ठीक है, आप ऊपर भी बैठ सकते माता जी, प्लीज, चेयर्स वगैरह हैं। अच्छा, हरे कृष्ण, चेयर में इधर भी बैठ सकते हैं ना प्रभु जी,
ठीक है,
यदि तकलीफ तो ऊपर भी बैठ सकते हैं, यू कैन सिट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वैकुंठ मैन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में श्रील प्रभुपाद को पूछा कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताओ, तो प्रभुपाद ने कहा मैं क्या है उनके बारे में बताओ, लेकिन एक ही चीज मुझे पता है, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर क्या है, वैकुंठ मैन है। तो उसी प्रकार से महाराज के बारे में देखा जाता है कि वो प्रभुपाद मैन के नाम से उनको इस्कॉन में जाना जाता है, कि सोल्ड आउट डिवोटी है, किसके लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से वो अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति इतने अधिक शरणागत है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सक्सेस या सफलता का राज क्या है, कि कितना अधिक हम अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित और शरणागत है। और यही एक इच्छा एक शिष्य से की जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में प्रश्न पूछा उनके शिष्यों ने, प्रभुपाद के गुरु भाई थे जिनका नाम था कृष्णदास बाबा जी वृंदावन, तो उनको पूछा कि कृष्णदास बाबा जी आप हमें बताओ कि जो प्रभुपाद के पहले भी उनके गॉड ब्रदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भेजे थे लंदन, बोन महाराज वगैरह जो सन्यासी थे, तो वो गए और सफलता प्राप्त किए बिना ही वापस आ गए, लेकिन ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी गए, प्रभुपाद गए और इतनी सफलता प्राप्त करके वो वापस आए, क्या उनमें क्या अंतर है, क्या कारण था प्रभुपाद इतने सफल हो गए। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद के अंदर दो विशेष क्वालिटीज थी, और वो वास्तव में एक भक्तों को पूर्ण शक्ति प्रदान करते, वो दो गुण। वो दो गुण क्या थे, सबसे पहला था कि प्रभुपाद के अंदर हरि नाम के प्रति प्रगाढ़ फेद था। क्या था, गुरु की सबसे पहले कोई सेवा शिष्य करता है या करना चाहता है तो वो क्या है, चैंटिंग 16 राउंड्स। गुरु जब हमें दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले सेवा देते हैं, तो वो सेवा क्या है, उनके इंस्ट्रक्शंस क्या है, 16 मालाओं का जप ध्यान पूर्वक करना। तो यदि हम हरि नाम के प्रति फिक्स है और ये सोचकर गुरु की ये सर्वप्रथम और सर्वोत्कृष्ट सेवा है, तो फिर हम देख सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम गुरु के इन आदेशों को सीरियसली नहीं लेते अपने लाइफ में, और फिर सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन महसूस हो रहा है, बहुत स्ट्रगल्स अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, तो हरि नाम के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा। इसलिए प्रभुपाद जब बोस्टन पहुंचे तो उन्होंने पोयम लिखी जिसमें उन्होंने कहा, हाँ, भक्ति नाही ज्ञान नाही नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम तुम्ही सार्थक करो, कि मुझमें डिवोशन नहीं है, मेरा नाम क्या रखा है, भक्ति वेदांत। भक्ति का मतलब है डिवोशन, वेदांत मीन्स जो बहुत नॉलेजेबल है। कहते मुझमें ना भक्ति है ना ज्ञान है, लेकिन हे कृष्ण एक चीज है, आपका ये जो पवित्र नाम है उसमें बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो प्रभुपाद अमेरिका भी गए तो हरि नाम को साथ ले गए और उसमें बहुत कठिन श्रद्धा थी। इवन बाद के दिनों में कोई किसी ने उनको पूछा कि आप इतने सारे मैनेजमेंट और इनमें बिजी हो, तो आप बताओ हाँ कि आप हरि नाम 24 आवर्स कैसे करते हो। तो प्रभुपाद ने उस डिसाइपल को कहा आओ और मेरे पीठ में बैक में कान लगाओ तब तुम्हें पता चलेगा। तो जैसे उस डिसाइपल ने कान लगाए तो क्या आवाज आ रही थी वहां से बैक से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से वो कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि प्रभुपाद का ये पहला गुण था, अपने गुरु ने दी हुई सबसे पहले सेवा जो हरे नाम का उच्चारण करना उसमें बिल्कुल फिक्स थे। और दूसरी चीज क्या थी, गुरु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो एक निष्ठ थे। तो इसी कारण से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी इवन अमेरिका अकेले गए, उनके पास कुछ सुविधा नहीं थी, 70 साल की आयु, 40 रुपीज उनके पास, उनका टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वहां जाकर भी इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। हाँ, क्या था, दो चीजें उनके लाइफ में थी, नाम सेवा और गुरु सेवा। तो शिष्य का मतलब ही है जो भगवान की ओर पदार्पण करना चाहता है उसको अपने जीवन में इन दो चीजों को पकड़ के रखना होगा। हाँ, आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए उसको तत्पर होना होगा। हाँ, जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल्स क्यों इतने सक्सेस हैं, क्या राज है, वो उन्होंने अपना कोई ऐसा भौतिक डिजायर नहीं रखी, उनका जीवन किसके लिए था, प्रभुपाद के लिए, वो जीवित किसके लिए है, प्रभुपाद के लिए। तो महाराज के जीवन से भी हम देखते हैं कि वो एक क्षण के लिए खाली नहीं है, एक क्षण के लिए, इसलिए उन्नत भक्त का लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम, वो अपना समय थोड़ा भी नहीं गवाता है, ये उसका विशेष क्वालिटी है। और सदैव दूसरों के हित के लिए जीवित रहता है, किसके हित के लिए, दूसरों के लिए, आदि का स्वयं उठाने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे जीवों का वो रियल वेलविशर है। तो महाराज के जीवन में हम हमेशा ये देखते हैं। तो एक बार अहमदाबाद में कोई मीटिंग्स हो रही थी, तो महाराज वहाँ मॉर्निंग में अपना ड्यूटी वर्शिप कर रहे थे, तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज उनके रूम में आते और उनके पीछे बैठ जाते हैं प्रणाम करके, और राधानाथ स्वामी महाराज पीछे से गाने लगते हैं, श्री विग्रह आरा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। उन्होंने गाना शुरू किया धीरे से और कहा कि मैं प्रभुपाद जाने के बाद मेरे किसी गॉड ब्रदर में प्रभुपाद जैसी एबिलिटी या नो सर्विंग का जो मूड है वो देखता हूँ, तो वो कौन है, गोपाल कृष्ण महाराज। इस प्रकार से जो प्रभुपाद के गॉड ब्रदर भी हैं वो भी देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी सारी चीजें कैसे कर रहे हैं महाराज, इतनी आयु में भी इतने टेम्पल्स, इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इतने डिवोटीज को इंस्पायर करना, इतने प्लेसेस में विजिट करना, ये वास्तव में कृष्ण का कोई प्रिय डिवोटी ही कर सकता है। इसलिए हमें अपने ड्यूटीज के बारे में सोचना चाहिए। एक शिष्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है, वो जीवित रहता है गुरु की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि दीक्षा का मतलब क्या है, दीक्षा का मतलब है जब हम गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके आगे इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं रहता। हाँ, ये हमने सोल बेच दिया अपने आप को, किसको बेच दिया, स्पिरिचुअल मास्टर को। इसलिए तो चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रह रहे थे तो उनको लगा कि बहुत दिन हो गए मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं गया। तो सनातन गोस्वामी फिर वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए वॉक कर रहे थे, उस समय तो कोई ट्रेन नहीं थी। अब सोचो कितना कष्ट, कितना स्ट्रगल था। अभी तो हम सबके पास इतनी सुविधा है तो भी हमें अपना जप करना बहुत कठिन होता है, एक घंटा पढ़ना अत्यधिक कठिन होता है, कुछ सेवा मिलती है तो उसमें भी हम कोई उत्साह नहीं होता। लेकिन ये सारे प्रभुपाद या ये आचार्य गण हैं, उनके जीवन में देखते हैं कि भौतिक सुविधाओं का अभाव था लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो अत्यधिक उत्साहित है, उतना ही एंथुजियाज्म था। तो जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए वॉक कर रहे थे तो पानी पीने की सुविधा नहीं थी। अभी तो हम आते समय सोचा प्यास लगी है तो तुरंत रुक गए, दो तीन बोतल्स खरीद ली, पानी पिए और आ गए यहाँ। वहां कौन उनको पानी देगा, सनातन गोस्वामी रास्ते में, रास्ते के किनारे जो गड्ढा था जो पानी था उसी को पीते पीते जगन्नाथपुरी की ओर वॉक कर रहे थे, उससे उनको एक बीमारी हो गई, कंडू रोग, जिससे सारे फोड़े आ गए बॉडी में, उसमें से पस निकलने लगा, बदबू आने लगी पूरे शरीर की। जगन्नाथपुरी पहुंचते पहुंचते तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे क्या करना होगा, ये शरीर खराब हो गया अभी, इससे अच्छा है ये शरीर को कहां में पूरे ले जाओ, जाऊंगा तो जगन्नाथ को देखकर रथ के नीचे इस शरीर को त्याग दूंगा और मरना चाहता हूं मैं। तो जब वो गए तो गए सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ, वहां एक स्थान है सिद्ध बकुल, तो हरिदास ठाकुर के साथ वो रहने लगे। तो हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर हरि नाम के प्रति बिल्कुल फिक्स थे, मतलब कोई व्यक्ति नाम सेवा और गुरु सेवा में बिल्कुल अति दक्ष है, स्ट्रिक्ट है, तो कृष्ण सारी सुविधाएं उसको दे देते हैं। इवन कृष्ण स्वयं जगन्नाथ टेम्पल से चैतन्य महाप्रभु उनके लिए प्रसाद क्यारी करके ले जाते थे एवरी डे, स्वयं जगन्नाथ जो लॉर्ड चैतन्य है। तो जब सनातन गोस्वामी उनके साथ रुके तो चैतन्य महाप्रभु जब आए और देखा कि दो लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, एक तो हरिदास ठाकुर दूसरा सनातन। हरिदास ठाकुर ने कहा देखो देखो अभी 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 सनातन आए हैं। तो सनातन गोस्वामी का तो पूरा शरीर उस बीमारी से खराब हो गया था, पस ऐसे गिर रहा था, बह रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं सोचा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनका आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी भागने लगे कि क्यों मैं इतना अधिक अस्पृश्य हो गया हूं, मुझे आप टच मत कीजिए। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, सनातन तुम्हारे जैसे महान भक्त का स्पर्श करने मात्र से कृष्ण भक्ति प्रवाहित होती है। उन्होंने कहा कि सनातन तुम कैसे सोच सकते हो कि इस शरीर को तुम त्यागना चाहते हो, मरना चाहते हो। हरिदास ठाकुर को कहा देखो इस सनातन को कि यदि किसी व्यक्ति का धन है और वो हमारा धन नहीं लेकिन हम खुद खर्च करते हैं तो वो व्यक्ति चोर कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर सनातन ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें तुमने किसको बेच दिया है, मुझे दे दिया है और ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस प्रॉपर्टी पर अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है और इस शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारी सेवाएं करवानी है। और उनके द्वारा उन्होंने वृंदावन में इतनी सारी सेवाएं करवाई, मदन मोहन टेम्पल, इतने ग्रंथों का निर्माण, पूरे ब्रज के लोगों को प्रचार। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के इस लीला से हमें सिखाया कि वास्तव में कोई व्यक्ति गुरु की शरण ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसका अधिकार अपने शरीर पर नहीं है, वो शरीर आध्यात्मिक गुरु का है। इसी मूड में एक भक्त को जीना चाहिए, तभी उसके जीवन में अंतिम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और वो क्या है, जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति है, कि अंत में जन्म लाभ पर पुंसा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, हमें लगता है कि बहुत भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करते रहो, क्योंकि इकट्ठा करने की आदत हमें बचपन से लगी है। जैसे हम छोटे से बच्चे होते खिलौने आते तो हम ऐसे इकट्ठा करते रहते खिलौने, कोई बच्चा दूसरा खिलौना ले तो हम रोने लगते चिल्लाने लगते हैं। तो बचपन से ही हमें भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की आदत डाली हुई है, तो हमें कुछ इकट्ठा करना है तो वह है कि भगवत भक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाओ, गुरु के प्रति शरणागति की भावना को बढ़ाओ, तभी क्या होगा, जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान नारायण या कृष्ण का स्मरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। प्रभुपाद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने कृष्ण का स्मरण करने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है उसको मृत्यु के समय स्मरण हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कृष्ण का स्मरण होना। इसलिए कृष्ण का स्मरण हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको गंभीरता से लेते हैं। इसलिए तो हम सारे ग्रंथों में देखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं किनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, किससे दीक्षा ग्रहण करते, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से। क्या राज क्या है, ईश्वरपुरी से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ईश्वरपुरी का एक ही गुण था, माधवेंद्रपुरी के कई सारे शिष्य थे, दो अलग अलग डिसाइपल्स थे, रामचंद्रपुरी और दूसरे थे ईश्वरपुरी। जब माधवेंद्रपुरी का अंतिम समय था तो माधवेंद्रपुरी चल नहीं सकते थे, बीमार हो गए थे, तो उनकी जो सेवा है किसने की, बहुत गंभीरता से ईश्वरपुरी ने की। तो ईश्वरपुरी ने उनकी इतनी अधिक सेवा की माधवेंद्रपुरी की। और रामचंद्रपुरी जो हमेशा अपने गुरु में भी क्या देखता था, दोष देखता था, गलतियां ढूंढता था, जिसके कारण उनका पतन हो गया। और ईश्वरपुरी को आध्यात्मिक गुरु ने, माधवेंद्रपुरी ने ये आदेश या ये वर दिया कि आपके जीवन में कृष्ण प्राप्ति निश्चित है। ईश्वरपुरी इतने फिक्स थे गुरु की सेवा के लिए। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए तो ईश्वरपुरी को कहते हैं कि आपका दर्शन करने मात्र से हजारों जीवों का उद्धार हो सकता है, आप जैसे महान आचार्य का। तो उसी प्रकार से जो शिष्य है उसको अपने ड्यूटीज के बारे में जानना चाहिए। जैसे हम गुरु के ड्यूटीज के बारे में चर्चा करते हैं, गुरु के क्वालिफिकेशन की चर्चा करते हैं, तो वैसे ही जो डिसाइपल है या शिष्य है उसको भी अपने जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, उसके बारे में जानना चाहिए। और सफलता इसी में है कि हम आध्यात्मिक गुरु के अधिक से अधिक किस प्रकार से शरण ग्रहण करें, क्योंकि ये जीवन मिला है हम गुरु की सेवा के लिए। जब हम अपने लिए अधिक जीते हैं स्वार्थ के कारण, तो हम अत्यधिक दुखी होते हैं अपने जीवन में। जैसे इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अपने लिए जी रहा है ना। इवन हम गुरु की शेल्टर लेने के बाद भी अपने लिए ही कार्य करते हैं, कभी सोचते नहीं कि किस प्रकार से स्पिरिचुअल मास्टर को मुझे सर्व करना चाहिए। शिष्य का मतलब है जो हमेशा सोचता है कि किस प्रकार से मैं स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करूं, क्योंकि वो जानता है यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश प्रसादात यश अप्रसादात न गति कुतोपि। वो इस चीज में फिक्स है, वो जानता है कि स्पिरिचुअल मास्टर को मैं प्रसन्न करूंगा उसी में ही कृष्ण की कृपा मुझे प्राप्त हो सकती है। उनकी अप्रसन्नता में क्या है, कृष्ण की कृपा असंभव है। इसलिए इवन पांडवों को भी भगवान कृष्ण शिक्षा देते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है गुरु या जो वैष्णव है उनकी प्रसन्नता। जब ये राजसूय यज्ञ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, राजसूय यज्ञ में कृष्ण की अग्र पूजा की, कृष्ण को प्राइम उनकी वर्शिप की। और फिर जब यज्ञ हो गया था तो उसका सफलता किसमें थी कि यज्ञ वेदी के पास ही एक टेबल पर एक बेल रखी थी, रिंग बेल रखी थी, और वो बजेगी अपने आप तो समझना चाहिए कि यज्ञ या सैक्रिफाइस सक्सेस है। तो फिर जब ये यज्ञ हो गया सबकी नजरें किस पे गई, उस बेल के ऊपर, वो बजे नहीं बेल, हैरान हो गए तो क्या कमी थे। तो कृष्ण ने कहा कि पांडवों को कहा द्रौपदी के साथ आपको आपके आध्यात्मिक गुरु या वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो उसके लिए भीम को कहा जाओ कोई वैष्णव पकड़ के लाओ। हम क्या है ढूंढते हैं कि अरे वैष्णवों की सेवा करना तो ढूंढते हैं, कोई कहां से, इंडिया से आए तभी वैष्णव, हमारे आसपास इतने वैष्णव हैं उनको आपस में सर्व करने के लिए हम तैयार नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि ये तभी कंप्लीट नहीं है जब इसमें क्या नहीं है, डिवोटीज को सर्व नहीं किया है। तो भीम गए और भीम ने एक डिवोटी को ढूंढ के लाया, तिलक लगाया होगा, कंठी पहनी होगी, जो कृष्ण के डिवोटी थे, लाया उनको और उनको भोजन, द्रौपदी को कहा कि आप अलग अलग व्यंजन कुक करो। तो द्रौपदी ने कई सारी चीजें बनाई और जब उस डिवोटी को सर्व किया जा रहा था तो डिवोटीज बड़े सिंपल होते हैं, तो वो द्रौपदी ने तो कई सारी चीजें अलग अलग कटोरियों में सर्व की, बहुत सारे स्पून्स दिए होंगे, अलग अलग स्पून से अलग अलग चीजें खानी होती है, ये डिवोटी ने सारा एक जगह कर दिया सारी चीजें मिक्स. और वो डिवोटी खाने लगा तो द्रौपदी के मन में ये जब खाया तो वो चला गया. फिर सबकी नजरें कहाँ चली गई, अभी तो ये घंटी बज जानी चाहिए, तो वो बजे नहीं. तो कृष्ण ने कहा पांडवों ने ठीक है, लेकिन द्रौपदी के मन में उनके प्रति एक विशेष प्रकार का एक प्रकार से द्वेष या फिर अपराध की भावना आई थी. तो कृष्ण ने उन्होंने पूछा कि क्या है, कि द्रौपदी ने ये सोचा कि मैंने इतना सब कुछ बनाया और ये खा कैसे रहा है ये डिवोटिया, सारा मिक्स वगैरह करके खा रहा है, जिसके कारण कृष्ण भी प्रसन्न नहीं थे. यज्ञ का मतलब ही है कि यज्ञ अर्थात कर्मनेत्र लोकोयम कर्म बंधन. यज्ञ का मतलब है विष्णु की प्रसन्नता. यदि विष्णु प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ पूर्णता नहीं है. और विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है. जब आध्यात्मिक गुरु हमारे सेवाओं से प्रसन्न होते हैं तो वास्तव में कृष्ण प्रसन्न होते हैं या कृष्ण उस सेवा को स्वीकार करते हैं. फिर से उस डिवोटी को लाया गया, द्रौपदी लज्जित हो गई, लाया गया फिर से उसने कुकिंग किया. अभी वो कॉन्शियस थे कि फिर से गलती नहीं. तो कृष्ण कॉन्शियस से पहले हमें कॉन्शियस होना होगा और हर एक एक्टिविटीज में किस प्रकार से मैं डिवोटीज के साथ डील कर रहा हूँ या किस प्रकार से मैं गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए अपनी चेतना को लगा रहा हूँ. क्योंकि गुरु के आदेशों को हम बहुत हल्का लेते हैं. यदि कोई शिष्य गुरु ने जो कहा उसको, चाहे उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको करने के लिए एक स्टेप उठाता है तो उस डिवोटी में सारी जो शक्ति है, सिक्स ऑपुलेंसेस है ना कृष्णा के, वो सारे आ जाते हैं. जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया केवल अपने गुरु की सेवा करने के लिए. अब सोचो वो मुंबई में गए, उनके पास धन नहीं था, कितने लोगों के पास जाकर कहा, गिड़गिड़ाए कि मुझे कहाँ भेजो, अमेरिका जाने के लिए आप प्लीज स्पॉन्सर करो, मेरे गुरु ने कहा है वहां प्रचार करने के लिए. तो वो मुंबई गए, उनको पता चला कि एक लेडी सुमति मोरारजी जो बहुत रिच है और वो कुछ सपोर्ट कर सकती है और बड़ी धार्मिक स्वभाव की है. तो प्रभुपाद उसके पास गए तो वो तो बहुत बड़े ऑफिस में बैठी थी, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सेक्रेटरीज थे. ये स्वामी जी सिंपल से गए तो इनको किसी ने एंटरटेन नहीं किया, इनको कहा आप बाहर रहिए, वो मिल नहीं सकती आपको. तो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी सुबह गए थे उसके ऑफिस में उससे मिलने, लेकिन शाम तक कहाँ बैठे रहे, उसके सीढ़ियों में बैठे रहे. जब शाम को वो निकले तो उसने साइड में देखा कोई सज्जन व्यक्ति बैठा है, कोई साधु वहां बैठा है. तो स्वामी जी वो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, क्यों आप यहाँ बैठे हैं मेरे ऑफिस के गेट में सीढ़ियों में. तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. तो सुमति मोरार जी ने कहा कि आप मुझे कल मिल सकते हो. और वो जाकर उनसे क्या उन्होंने याचना की, पहला तो कहा कि मुझे थर्ड पार्ट फर्स्ट कैंटो का प्रिंट करना है, और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि मुझे अमेरिका जाने के लिए आप क्या करो, आपके पास इतने सारे शिप्स हैं, किसी में भेज दो प्लीज. उन्होंने कहा स्वामी जी मरने जा रहे हैं वहाँ इतने बूढ़े आयु में, और सोचो ऐसे वर्ड्स आप किसी से सुनते हो तो आप क्या करोगे, आप डिस्करेज हो जाओगे ना. लेकिन फिर भी प्रभुपाद अनुत्साहित नहीं हुए, बिल्कुल उतना ही उत्साह था. तो जो शिष्य है चाहे संसार में कोई उंगलियां उठाए या जो मर्जी करे, गुरु के आदेशों का पालन करने उतना ही वो कठिन होता है, उतना ही उसके अंदर उत्साह होता है, वो पीछे हटता नहीं है. और जब प्रभुपाद पहुंचे भी वहां तो वहां जाकर उन्होंने देखा, मैं क्या सोच रहा था, यहाँ तो सारे लोग मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस में है, ये कौन सुनेगा ये कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में. तो जब ये उन्होंने सोचा, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते रहे प्रचार. और फाइनली हम देखते हैं कि ये जो छह ऐश्वर्य है कृष्ण के सारे प्रभुपाद की सेवा में लग गए. सोचो जो भी ऑपुलेंस ब्यूटी, प्रभुपाद कितने ब्यूटीफुल थे, चाहे उनके पास स्ट्रेंथ, दिन भर प्रचार आदि करते थे, रात्रि में 2 घंटे सोकर 11 बजे उठकर सुबह तक ग्रंथों को ट्रांसलेट करते थे, मतलब हर ऑपुलेंस को कृष्ण के हम देखेंगे प्रभुपाद से कनेक्ट करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यदि कोई डिवोटी अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करने में लगता है तो कृष्णा अपने ये सिक्स ऑपुलेंसेस उनकी सेवा में लगाता है। तो इसलिए हर एक डिवोटी को प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये असली लाभ है हमारे जीवन का कि एन प्रकार हम अपने आध्यात्मिक गुरु को सर्व करें, मतलब असिस्ट करना। डिसाइपल का काम क्या है? गुरु की सेवा में उनको असिस्ट करना। वही हमें सोचना चाहिए कि मैं छोटा सा एक पार्ट बनूं। ये आंदोलन प्रभुपाद ने इतना अमेजिंग खोला है, बल्कि हम सब लोग इतने भाग्यशाली हैं कि इसी पीरियड में हम सबका जन्म हुआ है। नहीं हाँ, पहले 100 साल 200 साल पहले होता, 100 साल पहले तो हमें अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं होती। हाँ, तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। कई बार हम दूसरे के फॉर्चून को देखते हैं लेकिन वास्तव में हमारे पास अधिक ब्लेसिंग्स है कृष्ण की, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो यहाँ बैठा है। हाँ, यदि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें तो देखेंगे कि कृष्णा ने अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं जिसके द्वारा मैं कृष्ण को सर्व कर सकता हूँ। और कृष्ण को सर्व करने का उपाय क्या है? उनके डिवोटी के माध्यम से, स्पिरिचुअल मास्टर के माध्यम से हम कृष्ण को सर्व कर सकते हैं। तो महाराज हमेशा चिंतित रहते हैं अपने डिसाइपल्स के प्रति और वो चाहते हैं। गुरु खुश कब होते हैं शिष्य से? यह नहीं कि कोई गुरु बहुत बड़ा दक्षिणा गुरु को देता है तो उससे खुश होते, नहीं। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण महाराज हमेशा देते हैं। महाराज कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु को हरे कृष्ण मंत्र मिला अपने गुरु से तो वो गंभीरता से उसका जप करने लगे। इवन प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में कहते कि आप सन्यासी होकर भावुक व्यक्ति की तरह ये हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हो, रोड पर नाचते हो, गाते हो, आपको वेदांत स्टडी करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मूर्ख आमी अमार नाही वेदांत अधिकार। मैं मूर्ख हूँ, मुझे वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसी कारण से मेरे गुरु ने क्या किया है, मुझे मंत्र दिया है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कहा कि इसको जप करो। मैंने इस इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ एंड सोल बनाया। फिर एक दिन जब हरिनाम जप कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु तो उनको सब पता चला कि कुछ मेरे साथ हो रहा है। हमारे साथ जप करते तो हम भागते जप से दूर, इच्छा नहीं होती है जप करने की। लेकिन वहां वो कहते किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल जपेते जपेते मंत्र करेल पागल। हे गोसाई, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, कौन सा मंत्र आपने दिया? इसका जितना मैं उच्चारण करता हूँ उतना ही अधिक यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मैडनेस है मैं वो अनुभव करता हूँ। तो ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा मैं हंसता हूँ, कभी गाता हूँ, रोमांच खड़े हो जाते हैं, हाँ कृष्ण भावना से मैं पूरी तरह से मग्न रहता हूँ। ये सही है या गलत, ये किससे कन्फर्म करने के लिए गए? अपने गुरु से। तो गुरु ने ये देखा ईश्वरपुरी ने, तो ईश्वरपुरी आनंदित हो गए, कहते यही तो मैं चाहता हूँ। स्पिरिचुअल मास्टर चाहते हैं कि जो डिसाइपल है उसका अटैचमेंट अनुराग कृष्ण से हो। कृष्ण से होने का मतलब है नाम रूप गुण लीला धाम, इनसे आसक्ति हमारी बढ़े, आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की सेवा के प्रति अटैचमेंट बढ़े। तो ये आकर्षण जब शिष्य के हृदय में बढ़ता है तो गुरु उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं। तो उसी के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए और उसी के लिए भक्तों को आपस में मिलना चाहिए। हाँ, तो आप सब लोग यहाँ दामोदर देश, मुझे ये सारे देश पता नहीं थे लेकिन 2 साल पहले प्रभु जी के साथ सारजा को क्या कहते हैं, श्याम देश और अवतारी देश के 150 डिवोटीज आए थे, तो मुझे उन्होंने अपने साथ 10-15 दिन के लिए वृंदावन और जयपुर के लिए इनवाइट किया था। तो मुझे सारे देश पता चले कि ऐसे भी कुछ हैं, यहाँ भी डिवोटीज इस प्रकार से रहते हैं। तो अच्छा है कि ये प्रभुपाद की कृपा से यहाँ भी कृष्ण भावना अवेलेबल है, तो आप सब मिल सकते हैं यहाँ, चाहे जैसे भी महीने में 2 महीने में मिल सकते हैं, आपस में ना चर्चा कर सकते हैं, एक विषय को लेकर श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, वैष्णव गीत गा सकते हैं। और तो क्या होगा, फिर हम गुरु के आदेशों का पालन करने में फिक्स रहेंगे और हमें हमेशा इंस्पिरेशन मिलेगा। माया का काम है भक्तों को एक दूसरे भक्त से अलग कर देना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज करते थे ना, डिवाइड करो और फिर रूल करो। तो इसलिए जितना हम अलग अलग रहेंगे उतना ही हम वीक होंगे, जितने हम मिलते रहेंगे और मिलकर मच्छिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति च, मिलकर ये करना चाहिए, भगवान के बारे में चर्चा करे, कीर्तन करे सिंसियरली और एक दूसरे को गाइड करे, तो हम आध्यात्मिक गुरु की सेवा में फिक्स हो सकते हैं। तो मैं ये भी सोच रहा था, अब अपनी डिटेल्स ना दे सकते हैं, नेम फोन नंबर ईमेल्स वगैरह, तो प्रभु जी महाराज के कोट्स वगैरह भेज सकते हैं आपको रेगुलर, है ना, तो फिर आप आपस में अच्छे से कनेक्ट रह सकते हैं। तो मैं आते समय सोच रहा था कि कैसे संभव है, महाराज ने कहा है कि मेरे बहुत कम डिसाइपल है उनको मिलो, तो मैंने कहा कैसे, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे आदित्य कृष्ण प्रभु का नाम बताया था, तो लेकिन फिर सबके सेवा से संभव हो सका कि सारे ही एक एक शेल्टर एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए, है ना, जहाँ मेरे लिए इजी हो गया हाँ कि मैं मिल पाया, तो महाराज भी बहुत खुश होंगे कि कम से कम डिवोटीज को मिल के आए हो वहाँ। हरे कृष्णा। तो हमने कीर्तन शुरू कीर्तन करना था, तो दो मिनट कीर्तन करते हैं। ठीक है,
इट्स अवर अवर प्लेजर दैट यू आर हियर। आज आपके आने से पहली ये हमारी पहली गॉडब्रदर मीटिंग ऐसी हो रही है जिसमें सारे आए हैं।
अरे वाह,
एक फैमिली जो इज ऑन द वे वो आज मान लेते हैं।
अच्छा, ओके,
सारे आए, मतलब जनरली क्या होता है कभी कोई नहीं होता कभी कोई नहीं होता, इट्स अ फर्स्ट मीटिंग व्हेयर एवरीवन इज हियर, इट्स योर ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद।
महाराज का ये क्या कहते हैं, ये कुछ बुक्स लॉन्च हुए हैं लेक्चर से कंपाइल, प्रभु जी नेक्स्ट मीटिंग में जब भी आप होंगे दे सकते हैं,
इंडिविजुअली तो कम
है, और बुक्स बैठ सकते हैं। अभी आज दो तीन बुक्स निकली है, एक कोट बुक है ब्यूटी ऑफ द सोल, रिसेंटली इस व्यास पूजा में लॉन्च हुआ है, और दूसरा एक बुक कंपाइल किया था 300 पेजेस का है, क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, वो अमेजिंग है, वहाँ तो उसका उसके लिए अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो ट्राई करेंगे कि कुछ कॉपीज तो प्रभु जी लाए थे अपने साथ, तो और भी भेज सकते तो वेट कर सकते। तो हम सॉन्ग गाएंगे जय अनिलो प्रेम धन, आज महान आचार्य उनका तिरुभाव है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज, मृदंग में बजा लेता हूँ, जय अनिलो प्रेम दाना करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर, रेना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर, रेना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर, रेना प्रभु कोता गेला सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा पता पते तपावन कहा दासरा नाता पति तपावन कहा दासरा गो नाता पते तपावन
Thank you.
श्रीराद पार्थ सारथे के शिष्यताय गौर सुंदर के श्रील प्रभुपाद के श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के समवेद गौर भक्त वृंद के निताय गौर प्रेमानंदे
बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए सब
हरे कृष्णा अभी प्रभु जी का नेक्स्ट क्लास है सिंधी हॉल में 1:30 to 2 का करिए एग्जैक्ट टाइमिंग अभी शिवालय प्रभु जी ने 1:30 to 2 बताया तो आप लोगों को जो अटेंड करना चाहेंगे तो यहाँ पर प्रसादन के बाद अटेंड कर सकते हैं सिंधी हॉल।